नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ अजय मसंत। नमस्कार अजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार प्रियंका जी।
आगे बढ़े उससे पहले मुख्य समाचार जान लेते हैं। महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुंची, शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला। भारत के गौरव चौहान कजाकिस्तान में एरोडा कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में पुरुषों के 92+ किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में। आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी और मनु भाकर तथा विजयवीर सिद्धू ने चौथे और आखिरी ओलंपिक चयन ट्रायल में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा जीत ली है। शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा सऊदी स्मैश में शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ सिंगल्स रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुंच गई हैं और विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। टूर्नामेंट से पहले वे 39वें स्थान पर थी। 28 वर्षीय खेल रत्न पुरस्कार विजेता मणिका ने जेद्दा में सऊदी स्मैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और अंतिम आठ में अजय जी मणिका ने जिस तरह से प्रदर्शन कर दिखाया और चीन की जो कह सकते हैं टॉप सीडेड सेकेंड नंबर
ओलंपिक टीम चैंपियन भी रही है और कई बार उन्होंने चैंपियनशिप भी जीती है। चाइनीज प्लेयर है एंड शी वाज रैंक नंबर टू इन दिस टूर्नामेंट आल्सो, तो उनको हराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मणिका बत्रा की। और डेफिनेटली आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में इनसे बड़ा बढ़िया कोई टेनिस प्लेयर जो है मतलब विमेन्स सेक्शन में जो है प्रोड्यूस शायद ही हुआ हो। और दूसरी बात यह भी है कि जब ये एशियन गेम्स में भी गई थी वहां पे भी इन्होंने एक मिक्स्ड टीम ब्रोंज लिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने बोथ गोल्ड मेडल और इंडिविजुअल गोल्ड और टीम गोल्ड भी जीता हुआ है। तो ओवरऑल और जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे वहां पे भी इन्होंने दो राउंड जीते थे टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भी,
तो पेरिस ओलंपिक के लिए
और पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है इंडिया टीम, जिसमें ये भी और बीइंग द टॉप रैंक प्लेयर इन विमेन्स वो डेफिनेटली सिंगल्स भी खेलेंगी और टीम इवेंट भी खेलेंगी। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी उपलब्धि है मणिका बत्रा की। और साथ में ये भी कहना पड़ेगा जिस हिसाब से इन्होंने अपने करियर को ढाला है, अपने स्पारिंग पार्टनर जो लिए हैं, इन्होंने अपने जो कोच जिनका चयन किया उससे भी बहुत बड़ी एक भूमिका बनती है कि किस तरह से जो है प्लेयर आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर आप देखें नीरज चोपड़ा को भी देखें, हमारे जो एथलीट हैं वो भी फेडरेशन कप में कल जो है कम्पीट करेंगे, ही विल बी कम्पीटिंग इन इंडिया आफ्टर 3 ईयर्स डोमेस्टिक लेवल पे। तो उनके पीछे भी देखिए कितने एक्सपर्ट्स का जो है हाथ है। मेहनत अपनी जरूर होती है लेकिन एक्सपर्ट्स का भी उसी हिसाब से बहुत बड़ा हाथ होती योगदान होता है उस प्लेयर के आगे बढ़ने में।
जी हाँ, सही दिशा मिलती है और आपका मार्गदर्शन होता है। बात मुक्केबाजी की, भारत के गौरव चौहान कजाकिस्तान में एलोर्डा कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में पुरुषों के 92+ किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और उन्होंने पदक पक्का कर लिया है। गौरव ने कजाकिस्तान के मुक्केबाज डेनियल सापारबे को 3-2 से हराया। 63.5 किलोग्राम भार वर्ग में शिव थापा पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। संजय 80 किलोग्राम भार वर्ग में चीन के टी टांगला टिहान से 0-5 से हार गए। देखा जाए तो शिव थापा का अगर जब नाम आता है तो उनसे एक पदक की उम्मीद की जाती है। 6 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता रह चुके हैं और अगर पिछली बार के जब एशियाई जब चीन में जो एशियाई गेम्स हुए हैं एशियाड हुआ है उसमें भी उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, तो लगातार उनका एक प्रदर्शन अच्छा देखने को नहीं।
देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं एक बॉक्सर के करियर में। सबसे ज्यादा जो इशू आते हैं बॉक्सर्स को वो आते हैं इंजरीज के। अगर आप देखें कि अमित पंगल ने भी जो है 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में, ओनली इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग इन जकार्ता एशियन गेम्स। उसके बाद देखिए उनका परफॉर्मेंस कितना डिप कर गया कि वो 2022 एशियन गेम्स में उनका कुछ भी नहीं हो पाया। उसके बाद अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और क्वालिफाई करना भी मुश्किल पड़ रहा है। तो ये सब चीजें एक बॉक्सर के करियर में चलती रहती हैं। स्पेशली एक बार इंजरी हो जाए अगर उनको, स्पेशली रिस्क की इंजरीज है। डिंको सिंह थे जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल वो भी लेके आए थे, तो अगर डिंकू सिंह को देखिए कि उनको एक ही एक इंजरी हुई थी, रिस्ट में इंजरी हुई, उसके बाद उनका पूरा करियर ही आगे नहीं बढ़ पाया, तो वहीं पे वहीं स्थिर होकर रह गया। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या रीजन हो सकता है, लेकिन देखिए एथलीट तो अपनी पूरी मेहनत करता है, पूरी मशक्कत करता है, लेकिन अगर वो आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसमें कुछ दोष इंजरीज का भी होता है, हो सकता है कुछ ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो बहुत सारे चीजें प्लेयर रोल इन इट।
मनु भाकर और विजयवीर सिद्धू ने चौथे और आखिरी ओलंपिक चयन ट्रायल में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा जीत ली है। मध्य प्रदेश राज्य निशानेबाजी में मनु ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने वाला 42 स्कोर किया। विजयवीर ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल में 34 स्कोर किया। मनु ने ट्रायल में पूरा दबदबा बनाए रखा, जो अभिंत्या पाटिल दूसरी और सिमरनप्रीत कौर बरार तीसरे स्थान पर रही। ईशा सिंह और रिदम सांगवान चौथे और पांचवें स्थान पर रही। मनु ने देखा जाए तो उनके ट्रायल समाप्त हो गए हैं 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, तो चारों ट्रायल्स में वे 500 से ऊपर स्कोर,
580 के ऊपर उन्होंने काफी अच्छा स्कोर मारा है। और डेफिनेटली उनका कोच का भी योगदान रहा है, उनके कोच भी एक लेजेंडरी लेजेंड रहे हैं, जसपाल राणा, जिन्होंने 2006 एशियन गेम्स में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। तो अगर उस तरह का अगर कोचिंग का बैकिंग, कोच का बैकिंग मिले तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस उसके अवार्ड का भी अच्छा आता है। मनु भाकर के पास एक्सपीरियंस है, वो टोक्यो ओलंपिक्स में भी गई थी, और उनका जो ये परफॉर्मेंस आ रहा है इतना अच्छा आ रहा है, इट बोड्स वेल फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स। और मुझे ये लगता है कि इन्हीं का ही चयन होगा, कि ये तो ट्रायल्स ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ने 4 ट्रायल्स कराए थे, जिसमें से जो है 3 बेस्ट स्कोर्स लेके जो है उन्हीं को वो सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे जो यहां लगता है, यहां इस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल विमेन्स में मनु भाकर और ईशा सिंह जो हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट है उसमें विजयवीर सिद्धू और अनीश भनवाला इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक प्रियंका जी, एक छोटा सा एक आपको बता दूं एक कि जो 25 मीटर रैपिड फायर है, हमारा इंडिया का बहुत स्ट्रांग पॉइंट रहा है, जिसमें विजय कुमार ने सन 2012 लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लेके आए थे। तो डेफिनेटली अनीश और विजय अभी सिद्धू से भी कुछ उम्मीद की जा सकती है तो कि वो मेडल लेके आए ओलंपिक से।
तो इस बार तो हमने पूरे जो इतना हमारा जो जा रहा है कॉन्टिजेंट, तो हमें
21 शूटर्स का कॉन्टिजेंट जाएगा पेरिस इस बार।
तो बहुत सबसे ज्यादा
पिछला सबसे ज्यादा 15 था जो टोक्यो में गए थे।
बात आईपीएल की, आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अजय जी, आईपीएल के 63 मैच हो चुके हैं और अब सिर्फ 7 लीग मैच बचे हैं, लेकिन अभी प्ले ऑफ की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई। केकेआर ने तो कल क्वालिफाई प्ले ऑफ के लिए कर लिया है। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ दोनों के 12 अंक हैं, तो आपको
देखिए दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों के जरूर 12 अंक हैं, लेकिन उनके साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी 12 अंक पे हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मैच खेले और आज उनका आखिरी मैच है। अगर वो आज जीतते हैं तो इनके मैक्सिमम होंगे 14 पॉइंट और इनका नेट रन रेट नेगेटिव में जा रहा है। तो अगर आप कहें कि ये क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है दिल्ली कैपिटल्स का आगे बढ़ना। आप लोग आंकड़े लगाते रहें, टेक्निकलिटीज बताते रहें, न्यूमेरिकल्स निकाल के बताते रहें कि ये शायद आगे चले जाए, लेकिन मुझे ऐसी कोई चांस नहीं लगती। दिल्ली कैपिटल्स अगर ये मैच जीत भी जाते हैं तो भी ये मेरे ख्याल से बाहर रहेंगे। ऑफकोर्स लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि इनका इस मैच के बाद एक और मैच है, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स आज का मैच जीत जाते हैं तो उनके 14 पॉइंट हो जाएंगे, और उसके बाद अगला मैच भी जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली वो एक प्लेऑफ्स के लिए जगह बना सकते हैं, अलोंग विथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का भी चांसेस बने हुए। लेकिन अभी तक जो लग रहा है, सिर्फ केकेआर ही जो है सेफ जोन में है, और राजस्थान रॉयल्स भी कुछ हद तक, काफी हद तक सेफ जोन में है, क्योंकि उनके भी 16 पॉइंट है, उनके पास भी अभी 2 गेम खेलने बाकी हैं, और जिस हिसाब से उनकी बैटिंग चलती है, संजू सैमसन हो गए और इतने अच्छे अच्छे प्लेयर उन्होंने रखे हुए हैं, उसके पास सनराइजर्स हैदराबाद ने जो एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए हैं इस पूरे आईपीएल सीजन में, वो काबिले तारीफ है। तो मुझे लगता है कि केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद, ये 4 टीमें प्लेऑफ्स में जाने जा सकती हैं।
जी, आपका कहने का मायने ये कि दिल्ली को जो हेड को क्वालिफाई करने के लिए लखनऊ को हराने के साथ बाकी नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा।
बहुत बाकी नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा क्योंकि इनका नेट रन रेट नेगेटिव में जा रहा है।
और अगर आज का देखें तो प्ले ऑफ की तो हमने बात कर ली है, अभी तक जो आउट हुए ऋषभ पंत की वापसी होगी है, जो होप है वो 38 रन बनाकर आउट हो गए हैं, और इसके अलावा जो फ्रेसर है वो शून्य पर आउट हो गए, अभिषेक पोरेल इस समय 53 रन बना चुके हैं, और जो होप है अब ऋषभ पंत जो आज पिछले मैच में
खेल पाए थे। दिल्ली कैपिटल्स का जो है पूरा दारोमदार रहता था डेविड वार्नर और के ओपनिंग के ऊपर, डेविड वार्नर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, उसके अलावा इनके और भी प्लेयर पृथ्वी शॉ जो इनके जो सबसे सलामी बल्लेबाज थे डोमेस्टिक लेवल पे, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पृथ्वी शॉ पूरे 2-3 सीजन से नहीं चल पा रहे हैं, तो एक ड्रॉबैक आ गया, ऋषभ पंत को बार बार आके बैटिंग करनी पड़ रही है, और हमने पिछले मैच में देखा ऋषभ पंत थे भी नहीं क्योंकि उनको जो है आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते उनको टीम में नहीं रखा जा, वो सस्पेंड हो गए थे एक मैच के लिए। तो ये सब अगर हम चीजें देखें, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट गई हैं इस पूरे सीजन में, इंजरीज हुई हैं टू सम की प्लेयर्स, उसके अलावा जैसे आपको बताया सस्पेंशन हुआ है, डेविड वार्नर नहीं चल पाए, पृथ्वी शॉ नहीं चल पाए, तो एक कंबाइंड इफेक्ट हुआ है इन सब चीजों का। मे बी अगले साल इनको अपनी स्ट्रेटजीज देखनी पड़ेंगी, रिविजिट करनी पड़ेंगी, और अपने ओपनिंग में क्या ये चेंजेस बदलाव ला सकते हैं। अभिषेक पोरेल ने चली आज हाफ सेंचुरी मार दी, शाही होप ने मार दिया, लेकिन वो कंसिस्टेंसी तो रही नहीं है।
इससे पहले कल के मैच की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं डाले जाने के कारण मैच रद्द होने के बाद गुजरात टाइटन्स की टीम बाहर हो गई, दोनों टीमों को एक एक अंक दिया गया। कल राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पुरुषों की राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसका कार्यकाल इस साल 1 जुलाई से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 को समाप्त होगा। 2027 में एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन भी होना है। राहुल द्रविड़ फिलहाल भारतीय टीम के हेड कोच हैं, उनका कार्यकाल आगामी T20 विश्व कप के बाद खत्म हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बांग्लादेश पर 5 मैचों की श्रृंखला में शानदार 105 रन की पारी के बाद आईसीसी T20 खिलाड़ी रैंकिंग में 3 पायदानों पर 13वें स्थान पर पहुंच गई हैं। ऋचा घोष भी 2 स्थानों पर 23वें स्थान पर पहुंच गई हैं। और इसके अलावा बात करें तो महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम का पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच 16 जून को बेंगलुरु में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैच होने हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आज कार्यक्रम की घोषणा की। वैसे तो पूरा बूस्टअप मिल चुका है भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बांग्लादेश को हराने के बाद, क्योंकि क्लीन स्वीप होने के बाद मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से है।
दक्षिण अफ्रीका के साथ है, लेकिन वो कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 5-0 का बूस्ट मिला है वो T20 वर्ल्ड कप जो होगा ना विमेन्स का बांग्लादेश में होगा, उसमें बहुत बड़ा बूस्ट मिला है बांग्लादेश को। कमिंग बैक टू द इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज, इंडिया ने डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है व्हेन इट कम्स टू द टेस्ट, वन ऑफ टेस्ट, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों को हरा के वो जो है उन्होंने टेस्ट मैच जरूर जीता है वन ऑफ टेस्ट, लेकिन जो मल्टी आपकी जो सीरीज होती है मल्टी फॉर्मेट सीरीज होती है उसमें इनका ODIs और T20Is में बहुत खराब प्रदर्शन रहा। हमें इस विमेन्स टीम लेड बाय हरमनप्रीत कौर, उनको ये देखना है कि इस परफॉर्मेंस को इन बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट कैसे, जैसे साउथ अफ्रीका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, इनके खिलाफ कैसा प्रदर्शन कर पाती है, क्योंकि यही इनका वीक पॉइंट है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जब ये जाएंगे बांग्लादेश तो वही बात आ जाएगी, चाहे आपने टेस्ट में जितना भी अच्छा कर लिया लेकिन T20 में आप कैसा प्रदर्शन करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया 6 टाइम चैंपियंस ऑफ T20 वर्ल्ड कप।
रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबिडन की जोड़ी इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई है। उधर बता दें भारत के मेईराबा मेसनाम ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। कल मुख्य दौर में उनका सामना भारत के HS प्रणॉय से होगा। समय कह रहा है आपसे विदा ली जाए। अजय जी धन्यवाद, आप आए चर्चा की,
धन्यवाद।
श्रोताओं प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।